I'm पद की रचना की थी। बहुत बड़े भक्त थे, उनकी पत्नी भी वैसे भक्त थे। इस पद को पुरी में एक देवदासी ने गान किया। वो शाम को कई कंडे बिन रही थी या कुछ कर रही थी और झाड़ियों में वन में इसी पद का गान कर रही थी। कितने सुरीले कंठ से गान कर रही थी, यह जगन्नाथ देव से रहा नहीं गया, वो प्रतिमा नहीं रही। और बड़े वेग से मंदिर से निकल करके और झाड़ी में उनके कपड़े लग करके चिर गए, अंग में भी कांटे लग गए, चिर गए। वो तो घटना उतार रही। इसके बाद में वो गान जब समाप्त हो गया तो फिर लौट करके आए। सवेरे में ठाकुर जी का पट खुला मंगल आरती के लिए, देखा कि कपड़े तो सब फटे पड़े हैं और अंगों में वो चिन्ह है कांटों के। लोगों ने, पुजारियों ने पूछा, प्रभु आपने ऐसी कौन सी लीला की, कोई चोर आकर के तो नहीं ये सब उसे ले गए और कुछ ये सब हुआ? वहाँ पर बड़ी मड़ी मुक्ता धारण की जाती है करोड़ों करोड़ों रुपये जगन्नाथ मंदिर, तो शायद कोई चोर आ गए हो, ले गए हो, किसी को पता नहीं लगा। राजा को भी खबर दी गई, राजा आए, उन्होंने पानी जी प्रभु अब बतलाइए कौन सी हमारी गलती हो गई, कौन सी भूल हो गई। रात में उनको स्वप्न हुआ, एक देवदासी यही गान कर रही थी, मुझे रहा नहीं गया, मैं बैठ नहीं पाया और दौड़ करके गया सुनने के लिए। इतने देर से दौड़ा कि कांटे लग गए और कपड़े फट गए या कहे गए, राहत आई उनमें, उनको शांति हुई। किंतु कहा जैसे अब रात में यदि गान होगा तो यही होगा, बाहर में कोई इसका गान न करे, नहीं तो ठाकुर जी को कष्ट होता है जाने आने में। भक्तों की उत्तर देवदासी तो उतनी भक्त नहीं है जितनी जयदेव, किंतु जयदेव के पदों को गा रही है इसलिए उसकी शक्ति उसमें आ गई और भगवान को आकृष्ट कर दिया। इसलिए महत्पुरुषों के द्वारा कोई जो भगवान के जो कीर्तन हैं, पद हैं, जैसे सूरदास के पद हैं, तुलसीदास जी की रामायण है या पद हैं, मीरा जय के पद हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो रूप गोस्वामी की जो प्रार्थना है, राधे जय जय माँ भगवती, ये सब में शक्ति निहित है। इसलिए जैसे तैसे अरे ठहरे गहरे के कीर्तन नहीं गाना चाहिए, जो ऐसे उच्च कोटि के भक्त हों उसमें शक्ति संचरित होती है और भगवान की इस पर कृपा होती है। उन्होंने इसमें अनुवाद दिया गया है, तभी मैं संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण की वंदना है, राधा और कृष्ण। कृष्ण वो कौन, नंदनंदन कृष्ण, ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर है। यहाँ पर देव कहने से वही समस्त देवताओं के भी, देवों के भी, जो समस्त भगवत अवतार हैं उन सब के भी अवतारों के भी मूल अवतारी जो कृष्ण है। कृत कमला कुछ मंडल ऋत कुंडल,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
के कमला। यहाँ पर राधा जी हैं, राधा जी के सिवाय एक क्षण भी नहीं रह सकते। यदि उनके शरीर के अंगों का यदि अवलंबन ना लें तो मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बंसी करण निपतिता, राधा जी को देखने से ही उनके हाथों से बंसी गिर जाती है। इतनी कृष्ण की सेवा करने वाली हैं, इतनी परम सुंदरी हैं, रूपवती गुणवती और सेवा करने वाली भगवान की लागनी शक्ति है। उनका काम ही है कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए जब भी कृष्ण उनको देखते हैं, बंसी करान निपतिता, हाथ से बंसी गिर जाती है और मोर मुकुट गिर जाता है। यहाँ तक कि प्राणिपत खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम, उनके पीत वसन गिर जाते हैं। ये सब कपड़े हैं वहां पे, न जाने कब गिर पड़े, होश नहीं, और यहां तक कि स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। उस समय में यदि नंद बाबा इत्यादि पास में हैं, तो उन्हीं का अंगों को पकड़ करके और वो संभल जाते हैं। इसलिए स्थित कमलार्थ मंडल स्थित कुंडल ए, गोपियों के गान ही उनके कुंडल हैं। एक तो सुंदर उनके कमल जैसे ये कुंडल झलमल कर रहे हैं, साथ साथ में गोपियों की जितनी सेवाएं हैं, उनके गान हैं, उनके गुण हैं, वही मानो उनके कुंडल हैं। कलित ललित बनमाल सुंदर माला झलमल कर रही है, पंचरंगों की सुंदर सुगंध सुगंध आ रही है, उसमें तुलसी की मंजरी भी लगी हुई है और उसमें भौरे भी झंकार कर रहे हैं। अद्भुत गले से लेकर के पैरों का माला है। जय जय देव हरि, देख रहे हैं मानो अपने भाव नेत्रों से देख रहे हैं और देख करके ये लिख रहे हैं, ऐसे ही नहीं। दिनमणि मंडन मंडल मंडन भवखंडन ए मुनियन मान सहन, जय जय देव हरि। सूर्य मंडल को भी प्रकाश देने वाले, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले, सवितु भरण्यम सूर्य को भी सूर्य के आराध्य हैं, सूर्य जो तपते हैं प्रकाश देते हैं, ये किससे? वो उन्हीं से, उनके थोड़े से गुण के आभास से ये प्रकाशित होते हैं। यदि कोई कृष्ण का यदि स्मरण करता है, भवबंधन को काटते थे, उनका नाम यदि कोई स्मरण करता है, कीर्तन करता है, जहां उनका जन्म हुआ है वहां पर जाता है कोई, या उनकी लीलाएं हुई है, भवबंधन सदा के लिए कट जाता है। भवबंधन माने क्या? जन्म और मरण में आना ही भवबंधन है, सबको काट करके देखता है। इसलिए मननशील जो साधु हैं, बुद्धिमान जो साधु संत हैं, मुनिजन हैं, उनके मन रूपी सरोवर में विहार करने वाले ये कृष्णचंद्र हैं। हे देव, तुम्हारी बार बार जय हो, तुम्हारी जय हो। कालिय नाके मद का मर्दन करने वाले आप हैं। काली के शरीर में बहुत विष है, कालकूट से भी विष। उस विष का भी जहां पर मूल आधार है, उसका मान मर्दन करने वाले हैं, और खेल ही खेल में उसके हजारों फणों को तोड़ दिया और उस पर नृत्य कर रहे हैं, और अपने जो जन हैं व्रजनों का मनोरंजन करते हैं उसी पर नृत्य करके। इसलिए जिसके हृदय में ताप है, ज्वाला है संसार की, यदि उनका स्मरण करे तो सब सदा के लिए दूर हो जाएगा। हे हरे, जब कुल जदुरूपी कुल के कमल को विकसित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं, जैसे सूर्य को देखकर के कमल खिल जाता है, जदुकुल, जदुकुल मैंने यहाँ पर जदु से उत्पन्न जो कुल है, अर्थात नंदनंदन और ये ब्रजेंद्र का कुल और उनका भी कुल, दोनों कुल आया। तुम्हारी बार बार जय हो। मधु दैत्य मूर नरकासुर सबका विनाश करने वाले हैं, असुरों का ध्वंस करने वाले हैं, और गरुड़ पर बैठ करके चलने वाले हैं। मन की गति से गरुड़ चलता है, स्मरण किया वो चला है, कल पुर्जे की कोई जरूरत नहीं, बस मन से कहा और गरुड़ जहां इच्छा तहां एकदम बैकुंठ तक भर लेकर के चले जाए, ये विमान तो वहां तक नहीं जाए। ऐसे विमान पर चढ़ करके चलने वाले, सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, और देवताओं के की क्रीड़ा के आदि कारण स्वरूप हैं। हे हरे, आपकी पुनः पुनः जय हो। रामावतार में जनक सुता कृत भूषण जनक सुता कृत वन में जब गए सुंदर सुंदर मालाओं से रामचंद्र जी का केश बेस बनाती और उनका भूषण करती थी सीता जी। ये राम भी कृष्ण ही है, कृष्ण का ही एक वैभव प्रकाश है। इसलिए सीता जी जिस राम को आभूषण कर रही हैं, आभूषित कर रही हैं, और जिन्होंने खरदूषण इत्यादि राक्षसों का क्षण मात्र में विनाश कर दिया, साधारण से रावण जैसे बलशाली थे उन सब का विनाश कर दिया। दूषण माने क्या? खर माने गधा। गधा किसको कहते हैं? अज्ञानी को। जिसको भगवत भजन का ज्ञान नहीं है उन लोगों को इसी कोटि में रखा गया है शास्त्र, उनको कोई ज्ञान नहीं। संसार भर का मैला वो ढोता है, पहाड़ों पर गुड़ लेकर के, चीनी लेकर के, घी लेकर के जाता, कोई भी चीज आस्वादन नहीं कर सकता। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, पढ़ते रहे, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो आस्वादन नहीं करते, वो सभी गधे के समान है। धर्म नहीं ना पशुभूत समाना ऐसा लिखा गया है। और दूषण में जितने प्रकार के दोष हैं उसका मूर्त विग्रह ये दूषण है, दोनों का विनाश करने वाले ये रामचंद्र जी हैं। ऐसे रावण को शांत करने वाले, समाप्त करने वाले रामचंद्र ये कृष्ण ही हैं। इसलिए हे देव आपकी जय हो, जय हो। नमी जलधर के समान जिनका अंगों का रंग है और फिर विद्युत पीताम्बर जैसे उनके शरीर पर सुशोभित हो रहा है, राधारूप महालक्ष्मी जी के मुख रूपी चंद्र के चकोर है। कहां इनका मुख चंद्र होगा और जगत के लोग चकोर जैसा उनको देखेंगे ऐसा नहीं कह करके इन्होंने बतलाया। ये कृष्ण की सबसे बड़ी प्रशंसा है, ये राधा रूपी मुख के चंद्र के ये चकोर कौन है? ये कृष्ण। हे देव, हे हरे, तुम्हारी जय हो। जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे संकटों को हरण करने वाले, संकट क्या? आपका दर्शन नहीं हो रहा, यही हमारा संकट है। मैं विरह में छटपट कर रहा हूं, इसलिए आप दर्शन देकर के हमारा संकट को दूर कीजिए। आप जितने प्रकार के भक्त जो प्रणत जन हैं, प्रणत माने जो भगवान के चरण में शरणागत हुए हैं, उन सबका आप जरूर दुख लेंगे। इस तरह से जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो कृष्ण हैं उनके लिए मैंने सुंदर मंगलमय ये निर्मल गीत की रचना की, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर के जगतवासी जो इस प्रार्थना को करेंगे उन सबका कल्याण विधान। इसलिए हम लोग महापुरुषों के रचित कीर्तन ही पद गाया करें। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी के पद, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पद हैं, सूरदास जी हैं, मीरा के भी कर सकते हैं। इसमें से गोपियों के साथ में कृष्ण का जितना संबंध है उसमें विशेष रुचि हम लोग लेंगे, वो इससे कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग वैसे कीर्तन करेंगे जिससे कि वो कृष्ण प्रसन्न हो। अच्छा, आप एक कीजिए। वो आसक्ति है कली और भाव है पुष्प और प्रेम उसका फल है। आसक्ति में चित्त, यही आसक्ति जब होती है तभी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निवापन, वहां से आरंभ हुआ। चेतो दर्पण मार्जनम यहां से आरंभ हुआ, इसके पहले चित्त रूपी दर्पण नहीं मार्जित होता है। जब तक कि आसक्ति नहीं हो और आसक्ति के साथ में कृष्ण से संबंध ज्ञान नहीं हो और नाम जो कीर्तन होता है उसे नहीं होगा, तब होगा। गुरु से दीक्षा इत्यादि होने के बाद में संबंध ज्ञान हो और फिर ऐसे आसक्ति के साथ में यदि भगवान का नाम लीला कथा सुनना इत्यादि हो, सब चित्त अपने आप थोड़े दिन में ही मार्जित हो जाएगा और बिना अनायास ही भगवान के चित्त में उठने जाएगा। इस स्थिति को साधारण आदमी जिसको आसक्ति नहीं हुई है नहीं समझ सकता, इसी को थोड़ा सा उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। जिसको आसक्ति हो गई है उसको कैसे समझा जाए? उसका आचरण कैसा होता है। एक जिसको आसक्ति हो गई है भगवान की लीला कथाओं और नाम इत्यादि में, एक समय प्रातः काल में वो निकला भोर भोर में, जाते ही देखा कि एक संत आ रहे हैं, ललाट में तिलक है, गले में तुलसी माला है और गले में एक कुछ झूल रहा है, वो क्या है? सालोग्राम शिला। उनसे पूछा, महात्मा आप कहां से आ रहे हैं? मैं वृंदावन से आ रहा हूं। वृंदावन से? उसका हृदय आनंद से खिल उठा। वृंदावन में आप कहां रहते हैं? उन्होंने कहा, जो मैं सेवा कुंज में रहता हूं। और भी आनंदित, गले में ये क्या चीज है? ये सालोग्राम की शिला है, मैं रोज इनका पूजन करता हूं। आपके बगल में क्या है? श्रीमद भागवत है। एक श्लोक हमको पाठ करके सुना सकते हैं? बस उनके चरण में प्रणाम करके और बैठ गए। महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने वो बैठ गए। कहे, एक श्लोक हमको भागवत का सुनाइए। तो उन्होंने श्लोक सुनाना आरंभ कर दिया। अक्ष्मतां फलमिदं न परम विदाम सक्का पशुन अनुविवेश यतोर वयस्ते वक्त्रं बजेश सुतयो अनुबेन जुस्तम जैवानिपीतम अनुरक्त कटाक्षम। बतला रहे हैं, आंख वालों का, आंखों का फल क्या है? कृष्ण का दर्शन करना। कौन से कृष्ण का दर्शन करना? जब सवेरे महात्मा जी कह रहे हैं और वो एकदम सुन रहा है तन्मय होकर, क्योंकि उसकी दृढ़ मन आसक्ति हो गई है, अब वो छोड़ नहीं रहा है महात्मा जी वर्णन करने में। आंख वालों का, यही आंखों का एकमात्र फल है, दूसरा मैं नहीं जानता। ये कौन कह रहा है? गोपियां कह रही। और सखी, आंख वालों के आंखों का फल यही है कि कृष्ण जब गोचर में जा रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों गैया उनके साथ में अब बछड़े हैं फुदक रहे हैं, काली और धवली श्यामली गायें, और कृष्ण लाखों सखाओं के साथ में उनको घेरे हुए हैं, कृष्ण के अधरों में बंसी विराजित है, मधुर मंद मंद मुस्कान खेल रही उनके अधरों पर, अत्यंत सुंदर सर्वांग उनका है, और वो मंद मुस्कान के साथ में बलदेव जी के साथ में बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। उस समय यदि उनका कोई मुखारविंद देखे और उनका मंद मुस्कान देखता हुआ बंसी का आवाज यदि सुने, उसका जीवन कृतार्थ है, उसी की आंखें साथ में। दूसरा उन्होंने कहा, ब्रजेश की वक्त्रम बजेश सुतयो अनुबेनु भी जुस्तम,